ओके सो 20 जनवरी लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जो 8 प्रमुख तत्व हैं बिजनेस व्यापार के स्वरूप के, इनको समझा था। ई बिजनेस में, ई कॉमर्स में कैसे ये आगे बढ़ेंगे इसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें शुरू के पांच तत्वों को हम विस्तार से समझ चुके हैं और अब छठे तत्व की बात हम कर रहे हैं जो है बाजार रणनीति। बाजार रणनीति का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे बाजार में अपनी स्थिति बनाने जा रहे हैं, कैसे ई कॉमर्स में आप अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे अपने उत्पादों के लिए या सेवाओं के लिए जगह बनाएंगे और कैसे व्यापार करेंगे, ये हमारी बाजार रणनीति होती है कि हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अट्रैक्ट टारगेट ऑडियंस, माने जो आपका ग्राहक वर्ग है उसको आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे जिससे वो आपके यहाँ आए और आपके वस्तुओं और सेवाओं को खरीदे, आपकी वस्तुओं और सेवाओं को आप कैसे प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तो दोस्तों इसमें बात हम लोग दो देखते हैं, एक कि कंपनी कैसे बाजार में प्रवेश करेगी और ग्राहकों को आकर्षित करेगी, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि अगर हमने बाजार में जो संभावित ग्राहक हैं उनको आकर्षित नहीं किया तो फिर हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा, हमारी जो रणनीति है वो विफल हो जाएगी। तो हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी, ऐसा व्यापार करना होगा जिससे हम ग्राहकों को आकर्षित कर सकें, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, जैसे टीवी पे लोग विज्ञापन दे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं तो आपको बहुत सारी छूट दे रहे हैं, जैसे आप पेटीएम का नाम जानते हैं, ठीक है। तो पेटीएम क्या कर रहा है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, क्या कर रहा है? आप में से किसी के पास पेटीएम है? हाँ तो उठाइए, पेटीएम है, चलो कुछ बच्चों के पास है, तो आप बेटा उससे कुछ खरीदती हैं? अभी कुछ नहीं खरीदा। हाँ क्या कर रहा है पेटीएम? क्या कर रहा है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए? देखिए रुक जाइए, हाथ उठाकर बताइए, आपको पहले बताया जा चुका है, बदतमीजी मत कीजिए, यह बदतमीजी की श्रेणी में आता है, आप समझ रहे हैं इसको? अगर आपको ये बताया जाएगा तो आप मुस्कुराएंगे, तो आप सॉरी कहेंगे, कहिए। अगर आपको कोई बात करनी है आप आराम से हाथ उठाइए, मैं इत्मीनान से बात करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से बात करेंगे, हमें 20 घंटा मिला हुआ है, हम 40 घंटा बात करेंगे, कोई रोक लेगा क्या? हमारे आपके बीच में कोई बंधन नहीं है, ठीक है। आप हाथ उठाकर बताइए, पेटीएम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहा है, हाथ उठाकर बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, देखिए इशारा समझिए, ये जितना आप बता रहे हैं ये तो कोई भी ऑनलाइन दे रहा है, SBI बड़ी भी दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास, विकल्प हमारे पास हैं। पेटीएम लगभग हर भुगतान पर, हर क्रय पर, जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं उससे, तो आपको कुछ ना कुछ अतिरिक्त छूट दे रहा है, पैसा दे रहा है, सीधे पैसा दे रहा है। आप बुक माई शो से टिकट खरीदेंगे तो कन्वीनियंस फी, सुविधा शुल्क लगेगा, मान लीजिए 25 रुपये लगेगा, तो पेटीएम वो 25 रुपये आपको वापस कर देगा, कैशबैक। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले पेटीएम से कार पार्किंग का पैसा दिया, 20 रुपये कुल देना था तो भी 3 रुपये वापस कर दिया, ये इंसेंटिव्स दे रहा है, क्यों दे रहा है, यही उसकी रणनीति है और इससे वो ग्राहकों को, संभावित ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, ये बात समझते हैं। तो जब ई कॉमर्स में जाएंगे तो देखेंगे कि संभावित ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें। अब क्योंकि वो लगातार पैसा दे रहा है तो SBI बड़ी तो नहीं दे रहा है, ई वॉलेट वो भी है और पेटीएम भी ई वॉलेट है, ट्रांजेक्शन ब्रोकर है, लेकिन वो बाकी लोग इस तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम जाहिर है कि पेटीएम की तरफ जाएंगे। पेटीएम की तरफ जाएंगे तो ये उसकी क्या हुई, विपणन रणनीति, कैसे वो बाजार में अपनी पैठ बनाए, जैसे इसी तरह से makemytrip.com वो भी अपने ग्राहकों को लगातार ई कूपन्स देता है, माने छूट देता रहता है। कोई भी होटल बुक कराइए, कोई भी हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराइए, टैक्सी बुक कराइए, कुछ भी बुक कराइए, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। 1200 की छूट, 800 की छूट, 1500 की छूट, 200 की छूट, कुछ ना कुछ छूट मिलती ही रहेगी। या कुछ खरीदिएगा तो कुछ और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई विपणन रणनीति। फिर दोस्तों अगली बात है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी संगठनात्मक क्या था, विकास। कैसे हम उस संगठन को बनाएंगे जो संगठन ई कॉमर्स करेगा, इसको हम कहते हैं संगठनात्मक विकास। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद इन अ फर्म नेसेसरी टू कैरी आउट द बिजनेस प्लान, जो भी हमने व्यापार किया क्या नियोजन किया है, इसको हम कैसे लागू करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये संगठनात्मक संरचना हमें बनानी पड़ेगी। संगठनात्मक संरचना का मतलब क्या हुआ कि कौन से कौन कौन से विभाग होंगे और प्रत्येक विभाग क्या क्या काम करेगा, इसको हम कहते हैं संगठनात्मक विकास, जो बताता है कि कैसे कंपनी या संगठन काम करेगा। जैसे आपने यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो यहाँ पर भी संगठनात्मक विकास का कोई उदाहरण आपको मिल सकता है। कैसे, प्रवेश भवन आपको एडमिशन देगा, प्रवेश देगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट वाणिज्य विभाग आपको पढ़ाएगा और परीक्षा नियंत्रक विभाग आपकी परीक्षा लेगा, तीन अलग अलग हो गए। ये ही हुआ संगठनात्मक विकास। इतनी बात समझ रहे हैं, कोई भी संगठन बिना संगठनात्मक विकास के नहीं चल पाएगा। कैसे, क्या, कौन करेगा, क्या क्या काम होंगे, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आठवां पॉइंट है प्रबंध समूह, यही लिखा था ना, प्रबंध समूह। तो प्रबंध समूह का मतलब क्या है कि जो भी विभाग हमने संगठन में छांट लिए हैं कि ये विभाग हमारे संगठन में होंगे, उनको कौन कौन लोग देखेंगे, कौन कौन लोग, व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह उनको चलाएगा, वह समूह हमें विकसित करना पड़ेगा। जैसे हम ये कहें कि प्रवेश भवन में कौन कौन काम करेगा, वाणिज्य विभाग में कौन कौन काम करेगा जो पढ़ाएगा, और फिर परीक्षा नियंत्रण विभाग में कौन कौन काम करेगा जो परीक्षा संबंधी कार्यों को देखेगा। तो इस तरह से हम जो प्रबंध समूह है, मैनेजमेंट टीम है, उसका विकास करते हैं। इतनी बात समझ आती है, कोई दिक्कत? ओके। अब अगला सवाल हमारे पास आता है पूंजी एकत्र करने का। पूंजी एकत्र करना, अगली हेडिंग है पूंजी एकत्र करना, यानी ई कॉमर्स जब हम कर रहे हैं तो पैसा भी चाहिएगा कि नहीं, पूंजी चाहिए होगी, बिना पूंजी के तो नहीं होगा। तो पूंजी एकत्र करने का, जिसमें एक पहला पॉइंट है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल माने बीज पूंजी, बीज पूंजी या मूल पूंजी, ठीक है, मूल पूंजी या बीज पूंजी आप लिख सकते हैं। यानी जो भी व्यवसायी व्यवसाय करना चाहता है कुछ पैसा वो लगाएगा, मैं कुछ पैसा लगाऊंगा, तो वो सीड कैपिटल हुई कि ये मैंने अपने तरफ से पैसा लगाया है। अब इसके बाद और कुछ पारंपरिक स्रोत हैं हमारे पास, हेडिंग नंबर टू हुआ पारंपरिक स्रोत, ठीक है। पारंपरिक स्रोत हमारे पास क्या क्या है, जैसे वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, दूसरा विनियोगकर्ता, तीसरा उपक्रम पूंजी प्रदान करने वाली फर्म, उपक्रम पूंजी प्रदान करने वाली फर्म, चौथा रणनीतिक साझेदार, रणनीतिक साझेदार, और पांचवा, अभी आप इंक्यूबेटर लिख लीजिए फिर देखा जाएगा हिंदी क्या है, ठीक है। पांचवा ये है इंक्यूबेटर, INCUBATORS, इंक्यूबेटर्स, फिर अब इसको समझते हैं हिंदी में क्या है। और एक फिर तीसरी मुख्य हेडिंग है समूह कोष, समूह कोष, क्राउड फंडिंग, समूह कोष, ठीक है। तीन हेडिंग हो गई। पहली हेडिंग सीड कैपिटल, यानी जो व्यक्ति है जो व्यापार शुरू कर रहा है वो अपनी तरफ से कोई पूंजी लगा रहा है। दूसरी हेडिंग हो गई पारंपरिक जो स्रोत है हमारे पास। पारंपरिक स्रोतों में पहला आपने लिखा वाणिज्यिक बैंक, यानी बैंक से जाकर उधार ले लीजिए। दूसरा आपने लिखा विनियोगकर्ता, जो आपके व्यवसाय में पूंजी लगाएं। तीसरा आपने लिखा क्या लिखा, ठीक है। तो वो लोग, ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिनके पास पूंजी होती है और वो देखते हैं कि कहाँ पूंजी लगाना उचित होगा, वहाँ वहाँ वो पूंजी लगाते रहते हैं। और फिर आपने देखा रणनीतिक साझेदार। रणनीतिक साझेदार का मतलब क्या हुआ कि आपने पूंजी के लिए किसी को साझेदार बना लिया। आपके पास आइडिया है, आपने कुछ थोड़े पैसे से शुरू किया काम और ज़्यादा पैसा क्योंकि आपको चाहिए था तो कौन देता, आपने किसी को जो पैसे वाला है उसको साझेदार बना लिया, ठीक है। जैसे मेरे मन में बहुत दिनों से समोसे का व्यवसाय करने का है, अगर आपको किसी को समोसे का व्यवसाय करना हो तो मैं रणनीतिक साझेदार हो जाऊंगा, तकनीक भी दे दूंगा, कैसे चलाया जाएगा ये भी बता दूंगा, करना लेकिन पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है कि जो व्यवसाय चलाने के लिए सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं कहीं आपको उपलब्ध करा दी जाएं, और जिसमें पूंजी है, दूसरे संसाधन हैं, ये सब आपको उपलब्ध करा दिए जाएं जिससे आप व्यवसाय शुरू कर पाए। और जैसे आप, आपको जब व्यवसाय आपका शुरू हो जाए तो फिर आप वहाँ से हटकर कहीं और जा पाएँ। जैसे जो नवजात शिशु होता है, अस्पतालों में जो नया बच्चा पैदा होता है, अगर वो कमज़ोर होता है तो उसको एक छोटी सी मशीन में रख देते हैं, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर माने कि जहाँ उसको धीरे धीरे पलने दिया जाएगा। तो ऐसे ही व्यवसाय को कहीं पलने दिया जाएगा तो वो इंक्यूबेटर कहते हैं। हिंदुस्तान में STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI लिख लीजिए, STPI इंक्यूबेटर का काम करता है, STPI, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाइएगा तो वहाँ STPI वालों का ऑफिस है, वो इंक्यूबेटर हैं, वो आपको किसी को भी अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सॉफ्टवेयर अब हम नहीं बताएंगे, रुक जाइए। STPI समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों STPI को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, गूगल कर लीजिए, ठीक है, गूगल कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, बात समझ रहे हैं। देखिए एक बात हम आपको और बताएं, हमसे आप वन जानकारी ले सकते हैं, टू जानकारी कहां से मिल सकती है ये ले सकते हैं, थ्री किस विषय के बारे में जानकारी लेनी है ये ले सकते हैं। हमारा काम आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देना नहीं है, हमें आपको बस इतना बताना है कि ये एक चीज़ होती है, अब आप उसको ढूंढिए, पढ़िए, ठीक है, पढ़कर निकालिए। अच्छा अब आज के ज़माने में क्योंकि इंटरनेट आ गया तो मुश्किल कुछ है नहीं, एक मिनट में अभी कोई बच्चा जो है अपने मोबाइल में एक सेकंड में STPI करे, पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी कुछ बच्चों का ये रिसर्च में एडमिशन हो रहा था, जो रिसर्च स्कॉलर्स आपको पढ़ाने आते हैं जैसे, तो उन्हीं बच्चों का एडमिशन के लिए इंटरव्यू चल रहे थे कल, इसीलिए हम आ भी नहीं पाए थे आपके पास। तो वहाँ वो लोग कुछ कुछ बता रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम सब कुछ थोड़ी जान सकते हैं। तो क्या करते थे, एक सेकंड मोबाइल निकाला, टक 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 उसको देखा क्या बता रहा है, और उसी से पूछा, फिर उसी को देख के पूछ लिया कुछ कुछ और, तो फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि वो पूरा पढ़कर नहीं आया था, विकिपीडिया पढ़कर नहीं आया था। कम से कम विकिपीडिया तो पढ़ लीजिए, विकिपीडिया में तो सब दिया ही हुआ है, जो भी विषय आप चाहेंगे विकिपीडिया जानते हैं, कितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए, हाँ तो काफ़ी लोग जानते हैं, तो विकिपीडिया में तो सब मिल जाएगा ना, कि नहीं मिल जाएगा, अभी STPI भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक नई चीज़ है ये समूह कोष, क्राउड फंडिंग। किसी को कोई पैसा देने वाला नहीं मिला, ठीक है। ये जर्मनी में शुरू हुआ था या फ्रांस में शुरू हुआ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्राउड फंडिंग, वहाँ पर कोई व्यापार शुरू करना चाहता था और उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने व्यापार के बारे में कोई बात, कैसे हम ये काम करना चाहते हैं, इंटरनेट पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, और जो जो इसमें पैसा लगाना चाहे लगाए, हमारी मदद करे। तो किसी ने 50 पाउंड लगाया, किसी ने 100 पाउंड लगाया, किसी ने 10 पाउंड लगाया, किसी ने 40 पाउंड लगाया, धीरे धीरे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग, समूह कोष। ठीक है, इस तरह से भी पैसा इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी इस तरह का होता है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हम आपको एक बता दे रहे हैं, rangde.com rangde.com। ठीक है, rangde.com को जाइएगा, ढूंढिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके कुछ कुछ लोगों को दे रहे हैं। इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। अभी ये फिर आगे कुछ सवाल आ गए कि क्राउड फंडिंग कैसे कैसे चल रही है, तो आप चाहें तो ये सवाल नोट कर लें। यस, आप सवाल नोट कर लें, ठीक है। आप अंग्रेजी में ही नोट कर लें, फिर हिंदी में इसका अनुवाद कर लेंगे। आप अंग्रेजी में नोट कर लीजिए। What types of projects and companies might be able to most successfully use crowdfunding? यानी किस प्रकार के की परियोजनाओं या कंपनियों को समूह कोष एकत्र करने में सर्वाधिक सफलता मिलेगी। सवाल नंबर दो है, What are there any negative aspects of crowdfunding? समूह कोष के क्या कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं? फिर तीसरा सवाल है, What obstacles are presented in the use of crowdfunding as a method to fund startups? मैंने जो नई कंपनियां शुरू हो रही हैं उनमें समूह कोष अगर एकत्र करना चाहें तो क्या क्या बाधाएं आएंगी। ठीक है, लिखते रहिए क्योंकि इसे पता रहेगा कि क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बात हुई थी क्लास में। वैसे ये पूरा प्रेजेंटेशन और ये पूरा ऑडियो ये सब वेबसाइट पर मिलेगा। प्रेजेंटेशन भी आपने देखा है कि नहीं किसी ने? वन तो आ गया ना, अभी टू आ जाएगा। ठीक है, अभी टू नहीं आया है, और आवाज़ आ गई है ये मैंने आपको अभी बता दिया, मैंने चेक भी कर लिया है कि आ गई है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने ई कॉमर्स व्यवसाय के स्वरूपों को देखा, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को देखा। अब तीन चीज़ें हमारे पास इस अध्याय में और बची हुई हैं। एक B2C बिजनेस मॉडल्स, यानी अब हम देखना चाहते हैं कि व्यवसाय से ग्राहकों तक जो व्यवसाय का स्वरूप है वो कौन सा है, उसमें क्या क्या बातें हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है ई टेलर, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, ई टेलर। ठीक है, ई टेलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका खुदरा व्यापारी होता है वही ऑनलाइन खुदरा व्यापारी ई टेलर हो गया। जैसे खुदरा व्यापारी होता है वैसा ही ऑनलाइन खुदरा व्यापारी ई टेलर हो गया। ठीक है, जैसे आपके बगल की दुकान होती है वहाँ से जाकर आप कुछ सामान खरीद लेते हैं, ऐसे ही आपके बगल की दुकान आपके फ़ोन में है, आपके कंप्यूटर में है, वहाँ पर आप जाके कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, उसको हम कहते हैं ई टेलर। इसमें जो राजस्व का स्वरूप है, कहाँ से पैसा आएगा, राजस्व का स्वरूप क्या है, वो है विक्रय, सेल्स, बिक्री होगी वहाँ से पैसा आएगा। इसके कुछ अन्य स्वरूप क्या हैं, इसके कुछ वेरिएशंस क्या हैं, तो एक है वर्चुअल मर्चेंट। अभी इसको हिंदी, कुछ कुछ लोग हिंदी कर रहे हैं ना मुझको देने के लिए, कुछ कुछ समूह आप लोगों के, ठीक है। एक है वर्चुअल मर्चेंट, दूसरा है ब्रिक एंड क्लिक। ब्रिक एंड क्लिक का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पुरानी दुकान होती है ईंट मिट्टी गारे वाली, वो भी है और आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तीसरा है कैटलॉग मर्चेंट, माने ये लोग ऑनलाइन बहुत सारे कैटलॉग्स देते हैं और इनका सामान आप खरीद सकते हैं। और चौथा है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट, माने उत्पादक अपना सामान स्वयं सीधे बेचने लगता है। ठीक है, इसकी जो खास बात है वो ये है कि शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं हैं। कोई भी अपना व्यापार शुरू करना चाहे तो वो व्यापार शुरू कर सकता है, व्यापार शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अच्छा, दूसरा स्वरूप है समूह प्रदान करने वाला, कम्युनिटी प्रोवाइडर, समूह प्रदान, समूह प्रदाता, आप लिख सकते हैं समूह प्रदाता, कम्युनिटी प्रोवाइडर, समूह प्रदाता। ठीक है, समूह प्रदाता कौन है कि जो व्यक्तियों को जिनकी आवश्यकताएं, जिनकी रुचियां, जिनकी प्रवृत्तियां एक जैसी हैं, उनको कोई समूह दे देता है, उसको कहते हैं समूह प्रदाता। जैसे WhatsApp में आपने ग्रुप बनाया हुआ है कि नहीं? बहुत सारे बनाए हुए हैं, वो समूह हो गया। तो WhatsApp क्या हुआ? समूह प्रदाता, आपको समूह बनाने की सुविधा उसने दे दी। जैसे Facebook पे भी आप लोगों का, काफ़ी लोगों का अकाउंट होगा, तो वो क्या है? समूह प्रदाता। बहुत सारे लोग अपना उसमें समूह बना ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं कि आज हमारे 300 हो गए, कि 500 हो गए, कि 200 हो गए, फ्रेंड्स हो गए, समूह प्रदाता। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से कह रहा है, उदाहरण क्या है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। रेवेन्यू मॉडल क्या है? कहाँ से इसका पैसा आएगा, माने राजस्व का स्वरूप क्या है? तो विज्ञापनों से आमतौर से इसका पैसा आता है, या मासिक शुल्क की मदद से भी पैसा आता है, या तो विज्ञापन के माध्यम से लेंगे या मासिक शुल्क लेंगे। कभी कभी लोग प्रत्येक व्यवहार पर भी शुल्क ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस भी लेते हैं। तो इस तरह से ये जो समूह प्रदाता है ये अपना व्यापार चलाते हैं। ठीक है, पहला हमने देखा ई-टेलर, दूसरा हमने देखा समूह प्रदाता या कम्युनिटी प्रोवाइडर, तीसरा है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? सामग्री, सामग्री प्रदाता, सामग्री प्रदाता, कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, ये वो लोग हैं, वह व्यापारी हैं जो तरह तरह की सामग्री आपको इंटरनेट पर या वेब पर देते रहते हैं। जैसे विकिपीडिया हमने आपको एक बताया, तो वो एक सामग्री आपको दे रहा है। बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स बेच रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग म्यूज़िक बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बेच रहे हैं, ये सब ऑनलाइन बिक रहा है। तो ये क्या है? ये सामग्री प्रदाता है या कंटेंट प्रोवाइडर है। इनका राजस्व का स्वरूप क्या है? फिर वही मासिक शुल्क, या जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा ले लेंगे आपसे, जितना भी इस्तेमाल करो उतना पैसा आपसे ले लेंगे। आपने 10 फोटो खींचा, 10 फोटो खरीदा, 10 फोटो का पैसा ले लेंगे। ठीक है, या हो सकता है हमने आपको कभी बताया हो कि हमने अपने मोबाइल में एक, अभी वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे डाला हुआ है कैम स्कैन, बताया था नहीं? अभी हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो क्या करता है कि उससे फ़ोटो खींच लेते हैं किसी भी इंग्लिश वाले उसकी पेज की, तो वो तुरंत इंग्लिश को कन्वर्ट करके टेक्स्ट फाइल बना देता है। तो ये भी एक सर्विस है, इसका सब्सक्रिप्शन है, सालाना हमें 3,000 रुपया इसका देना होता है। इसके जो वेरिएशंस हैं वो है सिंडिकेशन, फर्म्स डज नॉट ओन मटेरियल, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स इट, यानी आप खुद, जो ई कॉमर्स कर रहा है वो खुद मटेरियल नहीं बना रहा है, जगह जगह से मटेरियल इकट्ठा कर रहा है और कहीं जगह बेच दे रहा है। जैसे हम आपको हिंदुस्तान में एक उदाहरण दे देते हैं, copykitab.com, आप लिख लीजिए copykitab.com। copykitab.com क्या करता है? जगह जगह से पढ़ने की सामग्री ले लेता है, किताबें, ई बुक्स, और फिर उसको स्टूडेंट्स को बेचता रहता है। ठीक है, इसको वेब एग्रीगेटर्स भी कहते हैं, जैसे shopping.com, Travelocity, Priceline, ये सब क्या करते हैं कि जगह जगह के सामान, वस्तुएं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और आप वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है? ओके, फिर उसके बाद अगला जो स्वरूप है वो है पोर्टल, इसको पोर्टल ही लिख लीजिए, पोर्टल। ठीक है, पोर्टल का क्या मतलब हुआ? पोर्टल का मतलब हुआ कि एक ऐसी वेबसाइट जो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, व्यवहार करने के लिए पूरी सुविधा दे दे। आप इस वेबसाइट की मदद से वस्तुओं तथा सेवाओं को ढूंढ पाएं, उनका चुनाव कर पाएं, चुनाव करने के बाद आप भुगतान कर पाएं, और उसके आगे पीछे की जो सुविधा आपको चाहिए वह भी आपको मिल जाए, तो इसको कहते हैं पोर्टल। ठीक है, जैसे हम कहें कि मेक माई ट्रिप, या irctc.co.in, irctc.co.in आपको न केवल रेल का रिजर्वेशन देता है बल्कि टैक्सी का रिजर्वेशन भी देगा, चलती ट्रेन में आपको भोजन चाहिए तो वो भी दे देगा, जहां आप जा रहे हैं वहां आपको होटल चाहिए तो वो भी दे देगा, आप घूमने जा रहे हैं तो टूर पैकेज भी दे देगा, और सबका भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं, irctc.co.in पर कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा बढ़िया उदाहरण हो गया पोर्टल का irctc.co.in। आप में से कितने लोगों ने रेलवे रिजर्वेशन कराया है IRCTC? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ एक व्यवसाय का स्वरूप जिसे हम कहते हैं पोर्टल। कहाँ से पैसा आएगा? जो राजस्व का स्वरूप है वो क्या है? विज्ञापनों से और रेफरल फी और व्यवहार शुल्क और मासिक शुल्क, ठीक है। इसके जो विभिन्न और वेरिएशंस हैं वो क्या हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहते हैं पार्श्व, क्षितिजीय, हाँ क्षितिजीय पोर्टल, इसको आप लिख लीजिए क्षितिजीय पोर्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आईआरसीटीसी है वो हॉरिजॉन्टल है, जो भी आप व्यापार करने जा, जो भी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, व्यवहार करने जा रहे हैं, उससे जुड़े वो सारी चीज़ देता चला जाएगा। और वर्टिकल हो सकता है, वर्टिकल को क्या कहते हैं? लंबवत, ठीक है, चलिए लंबवत। तो लंबवत का क्या मतलब हुआ कि आपने जैसे कपड़ा खरीदा तो उसको सिलवाना भी आप चाहते हैं, तो कपड़ा कोई और बेच रहा है, सिलाई कोई और कर रहा है, तो आप ये, इसको हम कहेंगे लंबवत। या कपड़ा कोई और से खरीद रहे हैं, सिलवा किसी और से रहे हैं, और हो सकता है कि आप अपनी पसंद का कपड़ा खुद बुनवाना भी चाहें कि हमको तो इस धागे का कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो धागा आप खरीदें ऑनलाइन, उस धागे का कपड़ा आप अपने हिसाब से बनवाएं और उस कपड़े की अपने हिसाब से कमीज बनवाएं, तो ये हो गया लंबवत, ठीक है। एक हुआ हॉरिजॉन्टल, एक हुआ वर्टिकल। देखिए वर्टिकल कहता है फोकस अराउंड अ मार्केट सेगमेंट निश ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और फिर इसमें क्या बात होती है? खोज की सुविधा, सर्चिंग कैपेबिलिटी। पोर्टल में तरह तरह की चीज़ों को आप खोज पाते हैं, जैसे हमने मेक माई ट्रिप देखा या irctc.com देखा। irctc.com आपको किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए कितनी ट्रेन से सब ढूंढ देता है। अब तो वो ये भी बताने लगा है कि एक ट्रेन में अगर जगह खाली नहीं है तो उसी के आसपास और कौन कौन सी ट्रेनें हैं, विकल्प कौन कौन से उपलब्ध हैं, ताकि आप वैकल्पिक ट्रेन में भी जा सकें। बहुत तरह की सुविधाएँ धीरे धीरे ये पोर्टल्स हम लोगों को देने लगे हैं। फिर इसके बाद बच्चों जो अगला मॉडल है, स्वरूप है, वो है ट्रांजैक्शन ब्रोकर, माने व्यवहार, ट्रांजैक्शन माने व्यवहार और ब्रोकर माने क्या हुआ?
दलाल।
चलो लिख लो व्यवहार दलाल लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस माने व्यवहार ग्राहक नहीं कर पा रहा है या व्यावसायिक संगठन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेंगे कि ये ग्राहक के लिए वो ट्रांजैक्शन, वो ग्राहक के लिए या व्यवसाय के लिए वो व्यवहार कर देंगे, ट्रांजैक्शंस कर देंगे, ठीक है। जैसे पेमेंट लेना है, आपको भुगतान लेना है, आपने दुकान भी खोल ली, ऑनलाइन दुकान खोल ली, ऑनलाइन दुकान खोलने के बाद अब आपको पेमेंट लेना है ग्राहकों से, भुगतान लेना है, तो भुगतान कैसे हो? अब हर बैंक कोई कह रहा है कि हाँ तो स्टेट बैंक में खाता है, आप स्टेट बैंक का पेमेंट ले लीजिए, कोई कह रहा है हमारा SBI वो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, कोई कहता है हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है वीज़ा का उससे ले लीजिए, तो कितनी जगह आप संबंध बनाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास व्यवहार दलाल है, वो क्या है? पेटीएम। पेटीएम क्या है? व्यवहार दलाल है, आपका पेमेंट दे देगा, हम इनको पेमेंट देना चाहते हैं तो भी इनको पेमेंट दे देगा, ये हमको पेमेंट देना चाहते हैं तो भी पेमेंट दे देगा, बीच में कुछ शुल्क ले लेगा। इसी तरह से व्यावसायिक व्यवहारों में पेमेंट गेटवेज होते हैं, बैंक देता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या कि वो आपको हर तरह के बैंक से जोड़ देगा, हर तरह की पेमेंट की सुविधा दे देगा, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रांजैक्शन ब्रोकर। इनका राजस्व का स्वरूप क्या है? रेवेन्यू मॉडल क्या है? पुनः ये व्यवहार पर शुल्क लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, और कौन कौन से उद्योगों में ये इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री इज़ यूजिंग दिस मॉडल, कौन कौन से उद्योगों में ये इस्तेमाल हो रहा है, एक वित्तीय सेवा देने वाले, दूसरे यात्रा की सेवा देने वाले या मनोरंजन का सेवा देने वाले, और तीसरे जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनमें ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, फिर इसके बाद अगला है मार्केट क्रिएटर, माने बाजार बनाने वाले, बाजार बना डालते, पूरा का पूरा बाजार बना दिया। जैसे मॉल आप देखते हैं ना, जैसे विनायक सिटी सेंटर है, पूरा मॉल बना दिया, वहाँ तरह तरह की दुकानें हैं, ग्राहक भी जा रहा है, बाजार भी लगा हुआ है, अपना लोग जाके सामान खरीद रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली बाजार बनाने वाले क्या करते हैं कि वो एक पूरा वातावरण बना देते हैं कि यहाँ से आप बाजार आपको मिल गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपसे उदाहरण के तौर पर कहें कि आप सागर रत्न से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन, सागर रत्न तो समझ रहे, सागर रत्न से आप कहते हैं कि यार हमें ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दें, इडली डोसा सब जो खाने पीने के सामान है वो आ जाए। अब या तो सागर रत्न अपनी वेबसाइट बनाए और सब इसको इस सब चीज़ को ऑनलाइन करे तो सागर रत्न इसको झेले, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं और जो इलाहाबाद के तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, अब एलचिको का भी ऐसा हो, ठीक है, और भी तमाम रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, हमको तो नाम ही नहीं याद आ रहे अभी, वो सब हो इसमें। तो अब मान लीजिए हम अलाहाबाद रेस्टोरेंट्स डॉट कॉम बना दें, क्या बना दें, अलाहाबाद रेस्टोरेंट्स डॉट कॉम। अब इलाहाबाद के सारे रेस्टोरेंट्स इसमें आ गए, सबका मेन्यू दिखा हुआ है, सबका टाइम है कि कितने बजे कौन सा खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, क्या देता है क्या नहीं देता है, और आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, और वो डिलीवरी टाइम भी आपको दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ, हमने एक बाजार बना दिया, बन गया ना बाजार। अभी तक तो इलाहाबाद रेस्टोरेंट डॉट कॉम नहीं है, ये है नहीं है ना, तो देखिए आपको हमने खड़े खड़े आइडिया दे दिया, करिए जिसमें दम हो, ये व्यापार करिए, है आप में दम, किसी में व्यापार करने का दम ताकत, ठीक है। हमने आपको बताया कि नहीं, वो कलकत्ता में मोमोज वाले ने कैसे शुरू किया, बताया ना, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है, प्राइस लाइन, ईबे, ई ट्रेड, अब तो ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब इसके उदाहरण हो गए हैं। कोई भी अपना अभी जैसे अमेज़ॉन पर, ईबे पर, फ्लिपकार्ट पर कोई भी अपना सामान बेच सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक बाज़ार बना दिया, आप जो सामान बेचना चाहें बेचें, वो दिखाता रहता है ये सामान कौन बेच रहा है, ठीक है, और इसका राजस्व स्वरूप क्या है, फिर वही व्यवहार शुल्क या जो विक्रेता है उससे ये लोग शुल्क लेते रहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हमारे कुछ पहचान के बच्चे, उन्होंने सोचा कि गाय के गोबर की कंडी बनाई जाए और उसको ऑनलाइन बेचा जाए, ठीक है, उसका अलग अलग उपयोग होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है बनाओ बनाओ, तो वो लोग बहुत भागे दौड़े, दो महीना खूब तरह तरह के गाय की गोबर की कंडी बनाने का प्रयोग किया, उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलाईं, उसका पैकिंग डिब्बा उब्बा बनाया, फिर वो अमेज़ॉन पे बेचने की कोशिश किया। तो अमेज़ॉन क्या हो गया, मार्केट क्रिएटर, ठीक है, वो गाय की कंडी का व्यापार चला नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश उन्होंने किया। फिर उसके बाद अगला क्या है, सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई वस्तु नहीं दे रहे बट सेवा दे रहे हैं, कैसी सेवा दे रहे हैं, जैसे गूगल मैप, जीमेल, आपको ईमेल ईमेल आता रहता है, मुफ्त आता रहता है, बगल में क्या दिखाते हैं, विज्ञापन, विज्ञापन से पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। गूगल मैप, गूगल मैप में भी विज्ञापन आने लगे हैं, आपको बताता रहेगा कहाँ से जाइए, कहाँ भीड़ है, कहाँ भीड़ नहीं है, कौन सा रास्ता है। इसका जो वैल्यू प्रपोजिशन है, माने मूल्य संवर्धन, ये लोग कैसे कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं कि आपको सुविधा दे रहे हैं, समय बचा रहे हैं और आपको बहुत सारे सेवाओं के विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। और इनका जो राजस्व स्वरूप है वो क्या है, सेल ऑफ सर्विस, माने सेवा का विक्रय, अपनी सेवाओं को बेच रहे हैं, आपको शुल्क दे ले रहे हैं, आपसे मासिक शुल्क, या विज्ञापन दिखा रहे हैं, या जो आपसे उन्होंने सूचनाएं इकट्ठी कर ली, आपको पता ही नहीं चला कि आपसे सूचनाएं इकट्ठी कर ली, उसका बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आप कहेंगे यहाँ से बनारस का रास्ता आपने ढूंढा, तो कौन सा नंबर, कौन से टेलीफोन नंबर से गूगल मैप देखा गया और वो यहाँ से इलाहाबाद से बनारस गया, उनको पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तुरंत पता चल गया। तो कितने लोग रोज़ इलाहाबाद से बनारस का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कितने लोग कानपुर का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको सब डेटा मिल जा रहा है, और कौन टेलीफोन नंबर बार बार बनारस जा रहा है, तो अब उसको वो हो सकता है होटल वाले को बेच दें डेटा। तो आप या अपने एडवर्टाइजिंग में उसका इस्तेमाल करें। आप जब खोलें गूगल, आप जा रहे हैं बनारस, आपने बनारस का गूगल मैप देखा, आपने जीमेल खोला तो देखा बनारस के होटल दिखने लग गए, खूब होता है। ठीक है, अभी तो हम एक जगह गए थे योगा कैंप में, वहाँ सब ज़्यादातर विदेशी थे, तो कुछ विदेशी लोग ये कह रहे थे कि हम लोग खाना खाते वक्त फिल्म दंगल की बात कर रहे थे, खाना खाते वक्त, और जब जाकर हमने जीमेल देखा तो वहाँ दंगल दिखने लगा। तो वो लोग कह रहे थे कि ये सुनता भी रहता है क्या, ऐसा लगता है जैसे सब सुनता रहता है और सुनने के बाद समझता रहता है, प्रोसेस करता रहता है और उसके बाद विज्ञापन दिखाने लगता है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो वो लोग बल्कि मान रहे थे, कह नहीं रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ऐसा होता है। और हमने कहा था नहीं, हम पढ़ाते हैं, हमको पता है ऐसा नहीं होता, अभी ये सुनने लायक नहीं है, अभी ये समझने लायक है, बात पकड़ने लायक है, लेकिन अभी ये सुनने लायक नहीं बना है। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, तो कहते थे कि नहीं सुन लेता है, सुन के समझ लेता है, और सुन के तुरंत देखिए वही विज्ञापन दिखाने लगता है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर हुआ। अब बच्चों आइए हम अगला वाला देखते हैं, B2B बिजनेस मॉडल। इसमें जो ई कॉमर्स हो रहा है वो क्या है, B2B बिजनेस मॉडल, यानी व्यवसाय से व्यवसाय के बीच में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है ई वितरक। ठीक है, तो जैसे पारंपरिक ढंग से हमारे पास वितरक होता है या वो होता है होलसेलर को क्या कहते हैं, थोक व्यापारी होता है। तो जैसे हमारे पास थोक व्यापारी होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तरह तरह की बातों के लिए आते रहते हैं, तो मैंने अभी उनको राय दी है कि ई डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाइए दवाइयों के, क्या बुरा है, नहीं, ई डिस्ट्रीब्यूटर काहे का हो जाए, थोक विक्रेता हो जाए दवाइयों का ऑनलाइन। ठीक है, तो जितनी इलाहाबाद भर में दवाई की दुकानें खुली हुई हैं, वो जब चाहे अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोलें और अपना लॉगिन करें, आईडी डालें, जो दवाई उनको मंगानी हो उतना जितना पत्ता मंगाना हो डालें, ओके करें और शाम को ओके कर दें, रोज सुबह उनके पास आके डिलीवर हो जाए, क्या हो गया, ई डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये है रिटेल का, होलसेल का, माने फुटकर या थोक व्यापारी का ई स्वरूप। और ये किसके द्वारा कौन चलाएगा, ऐसा व्यक्ति चलाएगा या कंपनी चलाएगी जो बहुत से खुदरा व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसका राजस्व का स्वरूप क्या हुआ, सामान की बिक्री। और उदाहरण क्या है, Grainger.com। ठीक है, Grainger.com ये विदेशी है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, Grainger.com है, ये तरह तरह के सामानों को खुदरा व्यापारियों को देता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया अलाहाबाद restaurants.com हम लोग बना दें, ऐसे ही एक था campusfoods.com, बंद हो गया campusfoods.com, अमेरिका में बड़ा पॉपुलर था, अमेरिका में बहुत प्रचलित था। अब पूरे अमेरिका भर में जो जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षण संस्थान हैं उनके आसपास जितने भोजनालय थे, रेस्टोरेंट्स थे, सब की सूचना इसके पास थी, campusfoods.com के नाम से चलता था। और क्या करता था, तो उन सब कैंपसेस को सूचनाएँ, उन रेस्टोरेंट्स को सूचना दे देता था, आप रात को 1 बजे आपको भूख लगी, अब यहाँ की तरह तो है नहीं कि रात बजे को 1 बजे निकलते नहीं हैं लोग, वहाँ तो कभी भी निकलते, कभी भी खाते, कभी भी पीते, तो रात को 1 बजे आपको भूख लगी तो आपने तुरंत campusfoods.com देखा और campusfoods पे देखा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स खुले हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। जाने से बनेगा काम कि वो लोग आपको डोर डिलीवरी दे देंगे, ये आपने सब देख लिया, उसके हिसाब से आप चले गए। ठीक है, तो ये हुआ ई वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा हुआ ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रय, क्रय समझ लीजिए, हाँ, क्रय की प्राप्ति। ठीक है, चलो बेटे बैठो। ठीक है, तो ये हुआ ई प्रोक्योरमेंट, ई क्रय, ई क्रय समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रय। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी रहती हैं लगातार, तो अब आप क्या करें, आपको जो जो खरीदना है वो सब अपनी वेबसाइट पर डाल दें, तो ई प्रोक्योरमेंट हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई प्रोक्योरमेंट मॉडल है, रेल का ई प्रोक्योरमेंट मॉडल है, हर बैंक का ई प्रोक्योरमेंट मॉडल है। आप उनकी वेबसाइट पर चले जाइए, उनको क्या क्या खरीदना है वो उनकी वेबसाइट पर पड़ा रहता है, आप बेचना चाहें तो बेच दीजिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी का भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी है ई प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है वो एक दूसरे को मिलाते रहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है अरीबा ARIBA, अब ये भी बिक गई, अरीबा बिक गई, इसको खरीद लिया किसने, खरीद लिया सैस ने, हाँ SAS सैस अरीबा हो गई है। ठीक है, तो ये बड़ी मजेदार बात है कि जब तक हम पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं तब तक सब बदल जाता है, फिर कुछ कोई बिक जाता है, कोई खरीद लेता है, कोई कुछ नया शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बहुत आम बात है, बदलता रहता है, बदलाव आते रहते हैं। फिर तीसरा मॉडल है एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ, विनिमय। ठीक है, विनिमय, एक्सचेंज माने विनिमय। तो विनिमय में क्या हुआ कि एक की सूचना दूसरे को, दूसरे की सूचना पहले को, ये हो गया एक्सचेंज, ये सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज या विनिमय। इसमें जो राजस्व का स्वरूप है वह वही है कि प्रत्येक व्यवहार पर शुल्क लिया जाएगा, कमीशन फीस ली जाएगी, और ये विभिन्न क्या कहते हैं आपूर्तिकर्ताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है। सब सूचनाएं हर एक को उपलब्ध करा दी जा रही हैं, तो आइए जूझिए, देखिए कौन क्या भाव क्या दे पा रहा है। इसके बाद अगला स्वरूप है बच्चों उद्योग समूह, कंसोर्शिया, समूह लिख लीजिए, उद्योग समूह कंसोर्शिया। इसमें क्या होता है कि कोई एक उद्योग में जितने फर्म होती हैं, जितने व्यापार, जितने संगठन होते हैं, वो मिलकर एक समूह बना लेते हैं और तब वो ऑनलाइन चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं उद्योग समूह। ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद भर के, जैसे हमने कहा इलाहाबाद रेस्टोरेंट .com अभी है तो है नहीं, और हम अभी 5-7-10 रेस्टोरेंट वालों से संपर्क करें, क्योंकि ये बनाने में इलाहाबाद रेस्टोरेंट .com बनाने में पैसा लगेगा, मेहनत लगेगी, आसान नहीं है इस वेबसाइट को बनाना। ठीक है, अब इसको बनाने में लगभग 5 लाख रुपये खर्च लग जाएगा, तो अब 5 लाख कौन लगाए, तो इंडस्ट्री कंसोर्शिया, इलाहाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मान लीजिए इलाहाबाद रेस्टोरेंट्स .com बना दे, हो गया, क्या हुआ इंडस्ट्री कंसोर्शिया, वही उद्योग वालों ने अपने लिए मिलकर कोई ना कोई सुविधा बना ली। ठीक है, अब इसके बाद जो आखिरी बात है इस संदर्भ में वो है कि ई कॉमर्स ने व्यवसाय को कैसे बदल दिया, हाउ ई कॉमर्स चेंजेस बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स ने व्यवसाय को कैसे बदल दिया, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, व्यावसायिक उद्योगों की संरचना को कैसे बदल दिया। पॉइंट नंबर 1, उद्योग संरचना में बदलाव, मुख्य हेडिंग हो गई, हेडिंग के नीचे पॉइंट नंबर 1, विद्यमान प्रतिस्पर्धियों में प्रतिद्वंदिता, विद्यमान प्रतिस्पर्धियों में प्रतिद्वंदिता, राइवलरी। ठीक है, दूसरा हो गया प्रवेश में बाधाएं, बैरियर्स टू एंट्री, प्रवेश में बाधाएं। तीसरा हो गया वैकल्पिक उत्पाद, का भय। चौथा हो गया आपूर्तिकर्ता की सक्षमता, स्ट्रेंथ, सक्षमता। और पांचवा हो गया क्रेताओं का, अच्छा क्रेताओं की क्रय क्षमता, ठीक है, चलिए ठीक है। जो पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल, जो पोर्टर का पांच तत्वों का एक स्वरूप आप लोगों ने एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बात कर रहा है कि नंबर वन कि नए व्यापारी को अगर प्रवेश करना होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। दूसरा, उपभोक्ताओं को वैकल्पिक उत्पादों का पता लगने लगेगा। तीसरा, जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगेंगी, किस किस को बेच दो और उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से क्रेताओं की क्रय करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी सूचनाएं पता लगने लगेंगी। ये सारी बातें ई कॉमर्स ने व्यवसाय को बदलने में हमें मदद की है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब अगली बार आपसे